ओम शांति। इस भक्ति की शुरुआत एक छोटे से योग के प्रयोग से करेंगे। सभी स्थिर, तन के भव्य भाल पर विराजमान, चेतना की एक दिव्य किरण, चैतन्य की एक ज्योतिर्मय तरंग, दिव्यता का पुंज मैं हूं। संपूर्ण वायुमंडल अव्यक्त मन, संपूर्ण शांत स्थिर, मैं एक तेजस्वी आत्मा हूं। तपस्वियों में महातपस्वी, ऋषियों में राजऋषि, दिव्य ज्योति, फरिश्ता रूप धारण कर आसमान से गुजरते हुए मैं आत्मा अरावली की वादियों को चीरते हुए पहुंच गई तीर्थभूमि मधुबन के ऊपर। तपस्वियों की भूमि, ब्रह्मा की कर्म भूमि, ब्रह्मा की कर्मातीत भूमि, पांडव भवन, मैं फरिश्ता, शांति स्तंभ के निकट इस जगत की संपूर्ण विस्मृति, शक्तिशाली बनने का संकल्प हो तो बच्चे शांति स्तंभ पर आ जाना। शक्तियां मुझ आत्मा में भर रही, बाबा का हिस्ट्री हॉल व्यर्थ संकल्प तेज चल रहे हो तो हिस्ट्री हॉल में आ जाना। सभी पूर्वजों का वरदानी हस्त सिर पर, विशेष रूप से शांतामणि दादी का यादगार दिवस 15 जून सभी दादियों की वरदानी दृष्टि मुझ पर, बाबा का कमरा, मैं फरिश्ता बाबा से दृष्टि ले रहा। यदि बाप समान बनने का संकल्प हो तो बाबा के कमरे में आ जाना। जैसे कि मैं स्वयं इस समय मधुबन में हूं, ऐसी अनुभूति मधुबन का वायुमंडल अब मैं फरिश्ता उड़कर बाबा की कुटिया में बच्चे उदास हो जाओ तो बाबा से रूहान करने कुटिया में आ जाओ। व्यक्त बाप दादा आंखों के सम्मुख सारा बोझ समाप्त, मधुबन की पावन भूमि जहां भगवान ने स्वयं पांव धरे, मैं फरिश्ता धन्य धन्य हो और इसी पावन भूमि में मैं आत्मा संकल्प करती हूं कि अगले 2 दिन जीवन को पलटाने वाले होंगे। संपूर्ण पावन बनने का मेरा जो लक्ष्य है वो इन्हीं 2 दिनों में मुझे पूर्ण करना है। ये विकारी संसार संसार के सभी देहधारी संसार के आकर्षण इन सभी से परे बाबा एक तुम ही मेरे हो, बस अब यही संकल्प। तपस्या का अग्निकुंड मैं फरिश्ता इसमें प्रवेश करता हूं। वापस आकाश में उड़ते हुए मधुबन की पवित्रता की खुशबू लिए संसार में बिखेरते हुए मैं फरिश्ता धीरे धीरे वापस स्थूल देह में प्रवेश करता हूं। मैं संपूर्ण पवित्र फरिश्ता हूं। मेरे अंग अंग से पवित्रता की दिव्य किरणें इस सृष्टि के एक एक कण को पावन कर रही है। मेरी दृष्टि से सारा संसार फिर पवित्र बन रहा है। मेरा एक एक शब्द पवित्रता के प्रकंपन से भरा हुआ है। संसार की आत्माओं में पुनः पवित्रता का जागरण हो रहा है। संसार की सबसे अधिक पवित्र आत्मा मेरी ये पाकीज़गी संसार के लिए वरदान है। मेरी पवित्रता प्रकृति के लिए खुराक है। और मेरी पवित्रता प्रभु को अधिक प्रिय है। इन्हीं पवित्र संकल्प के साथ मैं आत्मा इस तपस्या भट्टी की शुरुआत करती हूं। ओम शांति। एक यात्री नाव में बैठा हुआ समुद्र की यात्रा कर रहा था कि अचानक तेज तूफान आया और नाव उलट गई। बड़ी मुश्किल से स्वयं को बचाते हुए वो एक टापू पर पहुंचा। वो टापू निर्जन टापू था। यहां वहां भटकता रहा, कोई न मिला। कई दिन बीत गए, कई हफ्ते बीत गए। पुकारता रहा, चिल्लाता रहा, परंतु वहां कोई न था। घूमता रहा, खाने को कुछ नहीं। नारियल पानी मिला, उसी पे जीवन गुजर करने लगा। एक मास बीत गया, इंतजार करता रहा कोई नाव आ जाए। और बहुत भक्त था, श्रद्धालु था, प्रभु को पुकारता था, प्रार्थना करता था, पूजा पाठ करता था किसी जमाने में। परंतु अब क्यों उसे लगा कि भगवान ने मुझे छोड़ दिया। परंतु फिर भी भक्ति अटूट थी, भक्ति की शक्ति थी। पुकारता, गुहार लगाता, हे प्रभु रक्षा कर, कहाँ है, क्या तूने मुझे छोड़ दिया, क्या मैं अकेला हूं इस संसार में, क्या अब तू भूल गया कि मैं भी हूं। ऐसे ऐसे प्रश्न। एक मास बीता, धीरे धीरे भगवान पर जो विश्वास था, श्रद्धा थी, आस्था थी, निश्चय था, फेथ था, कम होने लगा। कब तक भटकता रहे। एक झोपड़ी बनाई लकड़ियों से, घास फूस से, रहने लगा और भगवान को कोसने लगा हर दिन। क्या यही परिणाम है मेरी भक्ति का। दुखी था अंदर से, रोता था छुप छुप के, जैसे कोई देख रहा हो, पर देखने वाला कोई नहीं था। और एक रात जब ऐसा दुखी था और अपनी कुटिया में बैठकर लेटा था, अचानक तूफान आया, बिजली कड़की और बिजली उसके झोपड़ी पर गिरी और बिजली से उस झोपड़ी को आग लग गई। बड़ी मुश्किल से बचाता हुआ बाहर निकला और जोर से चिल्लाया, हे प्रभु कहाँ हो, कितने मास से अकेला भटक रहा हूं और उसमें एक झोपड़ी बनाई, उसमें भी तूने आग लगा दी। यही तेरा न्याय है, यही तेरा प्रेम है। कैसा ये प्यार है तेरा, कैसा ये दस्तूर है तेरा। और रोने लगा जार जार आंसू, सुबह की मुरली के शब्द। और अचानक दो लोग दौड़कर वहां आए और उन्होंने कहा कि हम लोग यहां से जा रहे थे, अच्छा किया तुमने अपनी झोपड़ी को आग लगा दी, नहीं तो हमको पता नहीं चलता था कि तुम भी यहां हो। तब उसने फिर से ऊपर देखा आसमान की तरफ और मन धन्यवाद से भर गया, मन बहुत बहुत अहोभाव से भर गया, शुक्रिया से भर गया, ग्रेटिट्यूड से भर गया। हे प्रभु, हमने क्या सोचा था और तुमने क्या कर दिया। और जब मन में इस तरह धन्यवाद का भाव उत्पन्न होता है, उस धन्यवाद में सकारात्मक ऊर्जा है, पॉजिटिव एनर्जी है, वो अब तक के सारे नेगेटिव विचार समाप्त हो गए। तो जब जब मन में धन्यवाद भरेगा, अपने आप जीवन में जो कटुता है, जो नफरत है किसी आत्मा के प्रति, घृणा है और संबंधों में कड़वाहट है, मैलापन है, मलिनता है, मनोमालिन्य है, कॉन्फ्लिक्ट्स इन रिलेशनशिप्स, अपने आप वो दूर होगी। और सबसे बड़ा धन्यवाद हम किसको करेंगे आज की तारीख, उस भगवान को, उस शिव बाबा को, क्योंकि तपस्या करने का मौका आना और संगठित तपस्या करना, इसका अपना एक महत्व है। इसीलिए सभी कोटा निवासियों की तरफ से उस अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक को कोटि कोटि धन्यवाद। तो सभी को अपना कोटा क्या करना है, फुल करना है अगले दो दिन में। भले आप सबकी भट्टी कल है, पर यह समझना आज ही से चालू हो गई है। आज ही का सारा दिन, आज ही से सारा दिन उस मौन में, उस अंतर्मुखता की गुफा में बैठकर बिताना है और एक लिस्ट बनानी है कि हे प्रभु, बाबा, तूने मेरे लिए क्या क्या कर दिया। जो सोचा नहीं था वो कर दिया। कब तक कंप्लेंट बॉक्स बनकर दुखी होते रहेंगे। उसने जो दिया है, उसने जो कुछ किया है, वो बहुत है। और शायद हम उसके योग्य भी ना थे, फिर भी उसने चुन लिया, फिर भी उसने अपना बना लिया। और जब उसने अपना बना लिया तो बाप का डायरेक्शन है, एक मुझी को याद करो। तो अभी इसे संकल्प करना है, मन में एक की ही याद, सुबह की साकार मुरली, मन से गंदे ख्यालात निकाल दो। तो आज सबके लिए होमवर्क दे रहे, पहला प्रश्न, गंदे ख्यालात किसे कहेंगे। दूसरा प्रश्न, गंदे ख्यालात से क्या क्या नुकसान होते हैं। और तीसरा प्रश्न, मुक्ति का मार्ग क्या है। गंदे ख्यालात, डर्टी थॉट्स की परिभाषा क्या है। संसार जिसको गंदे ख्यालात करता है वो नहीं, मेरे लिए गंदे ख्यालात कौन से हैं, कौन से मन में ऐसे विचार आते हैं। यदि उन विचारों को भगवान के सम्मुख रखा जाए तो भगवान कहेगा रिजेक्टेड, ये मुझे तस्लीम नहीं, स्वीकार नहीं। गंदे ख्यालात किसे कहेंगे, बंदे ख्यालात से क्या क्या नुकसान होता है और मेरे जीवन में क्या क्या नुकसान हुआ था और जब जब गंदे ख्यालात आए थे क्या क्या नुकसान हो गया था, कैसी स्थिति ऊंचाई के शिखर पर थी और कैसे धक से नीचे गिर गए थे। क्या फिर गिरूं? क्या पुरानी चोटें याद नहीं दिलाती कि अब गिरना नहीं है? और तीसरा प्रश्न है, मुक्ति का मार्ग क्या है? इन तीन प्रश्नों पर आज सारे दिन भर लिखना है। जो लिख सके, जो नहीं लिखते वो चिंतन करेंगे। एक एक प्रश्न के साथ साथ उत्तर। इस अनादि ड्रामा में जो कुछ हो रहा है, जो कुछ भी हो रहा है, बड़ा सूक्ष्म है, कभी कभी तर्कातीत है, समझ से परे है। परंतु जो ड्रामा का लेखक है वो कहता है ये ड्रामा एक्यूरेट है, ये ड्रामा फिक्स है। और आज का स्लोगन क्या है? क्या है? नथिंग न्यू की स्मृति से क्या क्या अचल आगे? एक जन बोलो कोई भी जोर से। नथिंग न्यू स्मृति अचल अडोल खुशी में नाचना। कीवर्ड्स। तो अभी हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे इस एक शब्द पर, नथिंग न्यू। स्वामी विवेकानंद जब बहुत छोटे थे तो उन्होंने अपने पिताजी से पूछा था, वो नरेंद्रनाथ पूछता है कि मुझे कुछ ऐसी बात बताओ जो जीवन भर मुझे काम आए, मुझे कुछ ऐसा सूत्र दो जो जीवन भर मुझे काम आए। उसके पिताजी उनसे कहते हैं, डू नॉट गेट सरप्राइज्ड एट एनीथिंग। जीवन में किसी भी बात से आश्चर्यचकित न होना, चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि जो कुछ हो रहा है भगवान उवाच, नथिंग न्यू। क्या क्या नथिंग न्यू? महत्वपूर्ण प्रश्न है। एक विदेश की बहन ने कुछ दिन पहले हमसे कहा था कि द्वापर से जो आत्मा गिरी है, क्या आप जानते हो उसका कारण क्या है? और उसने हमसे कहा, वो मत बताना जो मुझे पता है, क्योंकि वो 40 साल से ज्ञान में है। और वो हमसे पूछ रही थी, द्वापर से आत्मा क्यों गिरी, और वो उत्तर ना बताना जो मुझे पता है। और उन्होंने उत्तर दिया, गिरने का कारण था क्यूरियोसिटी, उत्कंठा, जानने की तीव्रता, विकार क्या है, ये देह क्या है, इसी ने आत्मा को गिरा दिया। जो नया होता है उसे जानने की तीव्रता होती है, इच्छा होती है, और जो पुराना हो गया उससे दिल हट जाता है। इस संसार में नया कुछ भी नहीं है। सुबह की मुरली, ये दुनिया कैसी है, गंदी है, ये दुनिया कैसी है, छीछी है, ये दुनिया कैसी है, वेश्यालय है, पतित है, विकारी है, पतित ही पतित, इन्वर्टेड कॉमा, साकार महावाक्य आज के, पतित ही पतित। ऐसी 8 से 10 बातें हैं जिसमें इस शब्द का प्रयोग करना है, नथिंग न्यू। परिस्थितियां तो है ही, पर उसके भी पहले सबसे पहली बात है ये शरीर। इसमें क्या नया है? कुछ भी नया नहीं है। और ये देह है क्या? झूठन का झूठन का झूठन का झूठन। यदि किसी को ये कहा जाए तुम्हें अपने देह से प्रेम है, वो कहेगा हां। और यदि उसको उल्टी हो जाए और उसको कहो कि ये उल्टी से प्रेम है, क्या कहेगा? घृणा है। एक गुरु अपने शिष्य से कहता है, जाओ कोई ऐसी वस्तु ले आओ जो तुमसे भी निकृष्ट है। वो सोचता है मुझसे निकृष्ट? बहुत सोचता है, बहुत सोचता है, बहुत सोचता है, फिर इस निष्कर्ष पर पहुंचता है, हां एक वस्तु है जो मुझसे भी निकृष्ट है, विष्ठा। और विष्ठा के पास जाता है और टच करने का कोशिश करता है, तो वो विष्ठा बोल उठती है। वो कहता है, वो विष्ठा बोलती है, खबरदार मुझे हाथ लगाया तो। किसी जमाने में मैं मिष्ठान्न अन्न थी, पकवान थी, जब से तुमने मुझे स्पर्श किया और तुम्हारे शरीर में मैंने प्रवेश किया, मेरा यह हाल हो गया। तुम तो मुझसे भी निकृष्ट हो। धक्का लगता है उसे, इस शरीर में ऐसा क्या है? कुछ भी तो नहीं। फिर क्यों ये संसार के सारे लोग, सारे स्त्री पुरुष इसी देह के पीछे पागल है? सारी फिल्में, सारी मैगजीन, सारा मीडिया, सारे उपन्यास, सारे गीत, सारी गजलें, सारे नज़्म देह के इर्द गिर्द की घूम रहे हैं। और भगवान आकर करता कहता है, यह देह डर्टी है, यह देह छीछी है, हमारी देह को हाथ भी ना लगाना। तो यह देह पुरानी है। अब जो पुराना है उससे वैराग आ जाए। नथिंग न्यू है इस देह में। जन्म जन्म इसी देह को तो भोगा। अतः चलो जन्म जन्म की बात छोड़ो, वर्तमान समय संसार के सारे लोग भी तो इसी देह को ही भोग रहे हैं। हम भी वही करें तो ब्राह्मण जो बने और भगवान जो बने, भगवान का जो बने, इतना श्रेष्ठ ज्ञान जो हमने लिया उसका क्या अर्थ हुआ? जगदीश भाई जी ने एक कहानी लिखी है, किताबों में आती है, कि एक कन्या है पनघट पर कुएं के पास पानी भर रही है। एक युवक वहां आता है और कहता है, मुझे प्यास लगी, पानी दो। वो कहती है, पानी मैं दूंगी पर अंग से अंग न लगे, पहले वादा करो तो ही दूंगी। वो कहता है, वादा, मुझे बहुत प्यास लगी है, जल्दी पानी दो। और वो पानी पीता है, ऊपर से वो पानी डालती है और वो चला जाता है। कुछ समय के बाद इन दोनों के माँ बाप इन दोनों की शादी कर देते हैं, तय, बिना इनको पूछे शादी हो जाती है। शादी में भी दोनों ने एक दूसरे को नहीं देखा, और जब पहली बार एक दूसरे के सामने आते हैं तो वो दुल्हन अपने पति को देखती है और कहती है, अपना वादा याद रखना, अंग से अंग न लगे। सबसे पहला नथिंग न्यू तो ये शरीर है, दूसरा नथिंग न्यू इस शरीर के संबंध है। सुबह की साकार मुरली, इस संसार के सभी संबंध बंधन है। इस संसार में ऐसा कोई भी नहीं जो तुम्हें सुख दे, सभी दुख देने वाले हैं। भगवान उवाच आज की मुरली के महावाक्य है, इस संसार का हर एक व्यक्ति तुम्हें दुख देगा। किसी से भी सुख की कामना ना करो, सुख देने वाला मैं हूं, केवल मैं, मेरे अतिरिक्त तुम्हें कोई सुख दे ही नहीं सकता। इतने धक्के खा लिए, इतने धोखे खा लिए, जो अपने थे उन्होंने सबसे ज्यादा दगा किया, फिर भी होश ठिकाने नहीं आए, फिर भी आशा बंधी हुई है कि एक दिन तो जरूर प्यार देंगे। और भगवान कहता है कभी नहीं देंगे, हम कहते हैं बाबा आपको नहीं पता ये हमारे बहुत प्रिय है, देंगे प्रेम। देह के संबंध बंधन है, ये ईश्वरीय प्रेम तुम्हें उड़ाने वाला है, वरदान, और कुछ भी उड़ाने वाला नहीं है, सब नीचे गिराने वाले हैं। तो दूसरा, ये शरीर के सारे संबंध नथिंग न्यू, सब पुराने हैं, जर्जर है, विकारी है, पतित है, बंधन है, पिंजड़े में डालने वाले हैं, इसमें नया कुछ भी नहीं है। नवीनता तो ईश्वरीय प्रेम में है, नवीनता तो ईश्वरीय संबंध में है, नवीनता तो इस नए संबंध में है जो भगवान ने इस समय आकर स्थापित किया है। और संसार के यह सारे संबंध सुरंदर मुनि सब की यह रीति, स्वार्थ हित सब कर ही प्रीति, सब स्वार्थ के लिए प्रेम कर रहे हैं, मां स्वार्थ के लिए प्रेम कर रही है बच्चों से, बच्चे स्वार्थ के लिए प्रेम कर रहे मां से, मां पत्नी स्वार्थ के लिए प्रेम कर रही है पति से, पति स्वार्थ के लिए प्रेम कर रहा है पत्नी से, ऊपर से दिख रहा है बहुत ही निश्चल निस्वार्थ प्रेम है परंतु अंदर स्वार्थ है। हम नहीं कहना चाहते, हमारा इतना शुद्ध प्रेम स्वार्थ जैसे शब्द और मोह जैसे शब्द से हम दूर रहना चाहते। ये मोह नहीं है, ये स्वार्थ नहीं, ये आसक्ति नहीं, हमारा शुद्ध प्रेम है, ऐसा हम कहते हैं। भगवान कहता है ये मोह है, और मोह विकार की श्रेणी में है। प्रेम का तो अनुभव संसार में शायद ही किसी को होगा। लव हैज नथिंग टू डू विद बॉडी, प्रेम को तो शरीर से कुछ लेना देना ही नहीं है। और संसार जिसे प्रेम कहता है उसका सारा संबंध केवल देह से है। हमारा एक दूर का लौकिक भाई था, उसको एक चमड़ी की बीमारी थी, सोरियासिस। कुछ आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट ली, ठीक हो गई थोड़े समय के लिए, उसी समय उसकी शादी कर दी गई जब वो ठीक था, और शादी के एक दो मास बाद वो बीमारी फिर आ गई। तो जो भाभी थी उसने केस कर दिया, डिवोर्स दे दिया, और वो जो भाई था इतना दुखी हो गया कि खुदकुशी कर ली। संसार के प्रेम का पोशाक का पोषण चमड़ी है, वो इस चमड़ी के सुंदरता पर टिका है, इसको खींच लो वो प्रेम मर जाएगा। तो इस संबंधों में कुछ भी नया नहीं है, सब पुराने जर्जर संबंध है, इसलिए भगवान कहता है इसको भूलो। तीसरा, इस संसार में आई परिस्थितियां, इन परिस्थितियों में भी नथिंग न्यू, कुछ भी नया नहीं है, कई बार आ चुकी है और अब फिर आ रही है। जो भी हमारे साथ हो रहा है नया कुछ भी नहीं है, इसलिए आश्चर्यचकित किसका, होना ही था। एक कवि ने बहुत अच्छा लिखा है और जो हमको बहुत प्रिय है, मैं तूफानों में चलने का आदी हूं, तुम मत मेरी मंजिल आसान करो। मुझे तूफानों में ही चलना अच्छा लगता है, इसके लिए मेरे मार्ग में आसानी नहीं लाओ, मुझे तूफानों में ही चलने दो। है फूल रोकते कांटे मुझे चलाते, मरुस्थल पहाड़ चलने की चाह बढ़ाते, सच कहता हूं जब मुश्किल ना होती है मेरे पग तक चलने में भी शब शर्माते, मेरे संग चलने लगे हवाएं जिससे तुम पथ के कण कण को तूफान करो। मैं तूफानों में चलने का आदी हूं, तुम मत मेरी मंजिल आसान करो। अंगार अधर पे धर मैं मुस्काया हूं, मैं मरघट से जिंदगी भुला के लाया हूं, है आंख मिचोली खेल चला किस्मत से, सौ बार मृत्यु के गले चुमाया हूं, है नहीं स्वीकार दया अपनी भी, तुम मत मुझ पर कोई एहसान करो। मुझे तुम्हारा एहसान नहीं चाहिए, मुझे तुम्हारी दया नहीं चाहिए, मुझे तुम्हारा कुछ भी नहीं चाहिए। ये जो तूफान है, ये जो बातें हैं, ये जो घटनाएं हैं, ये जो परिस्थिति है, सभी से मैं लड़ूंगा अकेले। इतना अदम्य साहस मुझ में है क्योंकि प्रभु की छत्र छाया इस समय है। वरदान है जो याद में है उनके ऊपर छत्र छाया है। इसलिए किसका डर, कैसी चिंता। और जो परिस्थितियां जीवन में आ रही है, कुछ ना कुछ सिखाने आ रही है। जो परिस्थितियां जीवन में आ रही है, पाठ पढ़ाने आ रही है, सबक दिलाने आ रही है। जो परिस्थितियां आ रही है, वो पेपर्स है, परीक्षाएं है। बाबा ने कहा परिस्थितियों को पास कर दो, तुम्हें सर्टिफिकेट मिलेगा विश्व विघ्न विनाशक का। एक लेखक ने लिखा, एक सूफी कवि ने, मैं तुमको सिखलाता हूं इसलिए नहीं कि मैं तुमसे ज्यादा अकलमंद हूं, मैं तुमको सिखलाता हूं इसलिए नहीं कि मैं तुमसे ज्यादा अकलमंद हूं, परंतु क्योंकि गलतियां मैंने तुमसे ज्यादा की है, पर मैं सीखा हूं हर गलती से। हर परिस्थिति ने मुझे कुछ सिखाया है। और जो परीक्षा है, विघ्न समस्या है, पेपर्स जीवन में आ रहे हैं, इसमें नया कुछ भी नहीं है। भगवान कहता है ये सब तुमने कई बार पास किया है, अब फिर आ गई है, अब अचल डोल रहो, क्यों दुखी होते हो। वो ब्रह्मा था जिसको सारे जगत का सम्मान प्राप्त था, और जैसे ही भगवान की प्रवेशता हुई, मित्र शत्रु बन गए, अपमान किया, ग्लानी की। एक अखबार था सिंध में, द ऑब्जर्वर, इंग्लिश न्यूज़पेपर, उसमें ब्रह्मा बाबा के लिए दो शब्दों का प्रयोग किया गया था, ही प्रैक्टिसेस लेचरी एंड सॉर्सरी। लेचरी अर्थात कामुकता, यह कामुकता का पुजारी है, और दूसरा सॉर्सरी, बंगाल से जादू टोना सीख कर आया है और यहां जादू टोना कर रहा है। एक ऐसा लब्ध प्रतिष्ठित व्यक्ति जिसके लिए सारा संसार इतना झुकता था किसी समय, वही संसार निंदा करने लगा, ग्लानी करने लगा, अपमान करने लगा। परंतु बाबा की स्थिति अचल, अडोल, स्थिर। जहां जहां ब्रह्मा कुमारी के प्रोग्राम होते थे, कई विरोधी लोग हर प्रोग्राम के बाहर खड़े हो जाते थे और पर्चे बांटते थे, ब्रह्मा कुमारी पाखंड। हापुड़ में कैसा भयंकर हंगामा हुआ, सेंटर का नल बंद कर दिया गया, इलेक्ट्रिसिटी बंद कर दी गई, वहां जो भाई था उसको गधे पे बिठा के घुमाया गया, सांप डाल दिया किसी ने उसके गले में। ऐसा प्रचंड विरोध, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं चाहिए, बस सेंटर बंद करो और जाओ यहां से, इतना विरोध। अगर बाबा हिल जाता तो सारी बहनें हिल जाती। इसके लिए भगवान नुवाच है, ये सब कुछ नथिंग न्यू, पहले भी हुआ था, अब भी हो रहा है, कई बार हुआ है। तीसरा, चौथा स्थान, स्थान प्लेसेस, ये देखू वो देखू, ये स्थान वो स्थान। मम्मा एक भाई के साथ कहीं खड़ी थी और उस भाई ने मम्मा से कहा, मम्मा देखो कितना सुंदर दृश्य है। मम्मा ने कहा ये सब भस्म हो जाएगा। एक नए प्रकार की माया है, साइट सीइंग, ये देखूं वो देखूं, इधर जाऊं और उधर जाऊं, और वहां जाकर भी ज्यादा टाइम किसमें है, फोटो लेने में, उस स्थान से भी कोई लेना देना नहीं। कुछ समय पहले हॉस्पिटल में एक यंग फीमेल बहन को लाया गया, ब्रॉड डेड, मर चुकी थी। अनादरा पर आए थे पति पत्नी घूमने, सेल्फी लेते 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 पीछे और गिर गई, और उसका वो युगल इतना रो रहा था, इतना रो रहा था, इतना रो रहा था, अस्पताल के सीढ़ियों पर बैठकर जोर जोर से रो रहा था, कई घंटों तक रो रहा था। ये देखूं वो देखूं, इस संसार के सभी स्थान केवल पुराने हैं, और यदि हमारे वहां जाने का केवल एक ही उद्देश्य हो, कौन सा? सेवा। बस जिस भूमि पर हमारे कदम पड़े वहां सेवा हो, इसके अतिरिक्त हमें इस संसार की किसी भी स्थान में कोई दिलचस्पी नहीं है। तो उस भूमि के कण कण में हमारे प्रकंपन समा जाए पवित्रता के। क्या देखना है इस संसार को। उसके बाद अगला है माया। माया भी नथिंग न्यू, ये जो विकार है नए नहीं है, वही पुराने पांच शत्रु और उनके बाल बच्चे कब से परेशान किए जा रहे, अब तक भी समझ में नहीं आया कि ये विकार ही दुख के कारण है। जिसे मैं मोह कह रहा हूं और उसका मैंने पालन कर रखा है, पोषण कर रखा है, वही मेरे दुख का कारण है। इस व्यक्ति में जो मेरा मोह है, यदि ये मोह हट जाए तो न मालूम कितना ऊंचा मैं उड़ जाऊं। किसी एक आत्मा ने एक आत्मा को बांध रखा है, उसको ही काट दो, उस धागे को, उसकी भी उन्नति होगी और तुम्हारी भी। तो सारे विकार, नया कुछ भी नहीं है उनमें। विकारों से प्राप्त सुख, उसमें भी क्या नया है, वही तो भोगा है इतने जन्म, फिर भी आसक्ति, फिर भी ऐसी आतुरता भोगने की, ऐसी बेचैनी। विकार की याद आते ही व्यक्ति सत्संग छोड़कर उस व्यक्ति के पास पहुंच जाता है, कितनी तीव्रता है। ऐसा पागलपन, व्यक्ति बूढ़ा हो जाता है, वासना भई जवान, देख लेना है ये सुख तुच्छ है, ये सुख पुराने हैं, इनसे हमें कोई लेना देना नहीं है। और आत्मा की प्यास सुख की है, यदि उसे अमृत वेला अतीन्द्रिय सुख नहीं दिया गया तो सारे दिन भर इंद्रिय सुखों को ढूंढेगी, क्योंकि आत्मा को सुख चाहिए किसी भी हाल में, एट एनी रेट, एट एनी कॉस्ट। उसे प्यास केवल सुख की है, सुख चाहिए उसे, अतीन्द्रिय या इंद्रिय कोई भी। अगर अतीन्द्रिय दे दो तो फिर इंद्रिय नहीं चाहिए, पर अतीन्द्रिय अगर नहीं मिले तो इंद्रिय सुखों के पीछे जीवन भर भागती रहती है, भागती रहती है। और इंद्रिय सुखों का एक गणित, एक स्वभाव है कि इंद्रिय सुख कभी भी तृप्त नहीं होते। सारा जीवन विकारों में जाता है व्यक्ति, सारा जीवन काम विकार को भोगता है, मरते समय भी वंस मोर की कामना से ही मरता है, तृप्ति नहीं होती। उनके स्वभाव को समझना है तो ही वैराग आएगा। तब तक वैराग नहीं आता, नहीं तो केवल दमन है। मुरली में सुन लिया, काम महाशत्रु है, आदि मध्य अंत दुख देता है। एक कुमार एक कन्या जो कि संसार में है और संसार के वायुमंडल में है, कॉलेजों में, और वो सब जीवन बिता रही है, अचानक ज्ञान मिलता है, ज्ञान में आ जाते हैं, पवित्रता धारण करते हैं, आगे बढ़ते हैं। मुरलियों में रोज आता है पवित्रता पवित्रता पवित्रता, परंतु जो ख्यालात उधर के थे उनका क्या, वो सारे दब गए। और ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारी जीवन लंबा समय बिताने के बाद वो बीच बीच में बाहर निकलते हैं फिर, क्योंकि वो आकर्षण अब भी है, पहले उधर था अब इस परिवार में है। विकारों के व्यर्थता को देख लेना ही मार्ग है मुक्ति का। विकारों के प्रति घृणा आ जाए, मार्ग है मुक्ति का। विकारों से हो रहे डैमेज को देख लेना, भगवान कहता है काम विष है, विष क्यों आतुरता इस विष को पीने की? व्यर्थता और नुकसान, ये दो चीजें। जो भी चीज से मुक्त होना है, ये दो पॉइंट्स लिखने। एक व्यक्ति है दारू पीता है रोज 40 साल से, उसको छोड़ना है। दो काम करने पड़ेंगे गहराई से, क्या क्या नुकसान हो रहे हैं इससे रोज चिंतन करना पड़ेगा, और दूसरा कितना ये व्यर्थ है इसका चिंतन करना पड़ेगा। जो व्यक्ति दारू पीता है और उसे दारू से मुक्ति का जो मार्ग है, वही मार्ग हमारा भी होना चाहिए विकारों से मुक्ति का, क्योंकि विकारों का भी एडिक्शन है। नहीं जाओ तो बेचैनी, और जाओ विकारों में तो पश्चाताप, ऐसा द्वंद है। नहीं जाओ तो बेचैनी, और जाओ तो पश्चाताप प्लस बेचैनी, डबल। उसमें पश्चाताप नहीं है, पहले में केवल बेचैनी है। चाहे क्रोध हो, लोभ हो, मोह हो, अहंकार हो, काम हो, दूसरे में पश्चाताप ऐड हो जाता है और एडिक्शन ऐड हो जाता है, लत, बार 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 वही करो। तो एक माया भी क्या है, बहुत पुरानी है, इसका हम पर कोई असर ना हो। उसके बाद है समय, ये समय भी पुराना है, नया इसमें कुछ भी नहीं है। फिर उसके बाद में ये तत्व, ये सारे तत्व भी पुराने, इसमें नया कुछ भी नहीं है। इस संसार की सुख सुविधाएं, ये सब भी पुराना है, इसमें नया कुछ भी नहीं है। नए की प्यास, इंद्रिय सुख सब पुराने हैं, नया कुछ भी नहीं है। व्यक्ति सब पुराने हैं, नए कुछ भी नहीं है, सारे व्यक्ति पुराने हैं। दिन रात इस ज्ञान का मन ही मन चिंतन करते रहना है, मनन करते रहना है। वैराग पर चली हुई साकार मुरलियों में सबसे श्रेष्ठ मुरलियों में से आज की मुरली है, जिसमें शब्द शब्द में बाबा ने कहा है किसी से दिल नहीं लगाओ, किसी से दिल नहीं लगाओ, तुम्हें सबसे नफरत आनी चाहिए। सुबह भी कहा विश्व कल्याण का मार्ग है विश्व नफरत, विश्व घृणा। अर्थात व्यक्ति से घृणा नहीं है, विकारों से घृणा है। ए और अ और बा दो व्यक्ति है, दोनों का आपस में संबंध है, दोनों को आपस में नफरत नहीं करनी है, परंतु दोनों के बीच संबंधों में जो विकार है, जो देहभान के छींटे पड़े हैं संबंधों में, उस छींटों को निकालना है, उस छींटों पर काम करना है, इससे नफरत। तो इस संसार में जो हो रहा है सब कुछ पुराना है, ये दुनिया ही पुरानी है, और हमारा ध्यान अब नई दुनिया की तरफ लगाना है। हमें वो बनना है संपूर्ण पवित्र। बाबा कहते हैं लक्ष्मी नारायण के चित्र के सामने जाकर बैठ जाओ, देखो उनमें कितनी प्यूरिटी है, ऐसी प्यूरिटी हम में आ जाए। संकल्पों में प्यूरिटी, स्वप्न में प्यूरिटी, कल्पना में प्यूरिटी, स्मृति में प्यूरिटी, हमारे लिखने में प्यूरिटी, हमारे बोलने में, खाने में, हर चीज में प्यूरिटी, हंसने में प्यूरिटी। हा हा हा, जोर जोर से नहीं हंसना है, हंसो तो कैसा लगे, कैसा लगे, हा, जैसे कि पवित्रता के फूल गिर रहे हैं। बोलो तो शब्द शब्द में प्यूरिटी के प्रकंपन हो। ये सबसे बड़ी मदद है हमारी विश्व के लिए, भगवान को सहयोग, इससे बड़ा उसको और कोई सहयोग नहीं चाहिए। ये अंतिम सहयोग वो मांगता है, बाप बच्चों से भीख मांगते हैं, क्या बच्चे पवित्र बनो। अच्छा, तो आज बहनों की भट्टी है, शाम को कुमारों की भट्टी है, और कल फिर अमृत वेले आप सबसे फिर मिलेंगे, परंतु आपकी भट्टी अभी से चालू हो चुकी है, ऐसा ही समझते हुए यहां से जाना है। ओम शांति।